नमस्कार दोस्तों, मोबाइल से आपका दोस्त योगेश। हमारा आज का विषय है, कैसे है हमारे स्कूल। सरकारी स्कूलों की बदहाली किससे छुपी हुई है? इसी कारण देश की पूरी शिक्षा व्यवस्था, प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक, पूरी तरीके से बाजारवाद की जकड़ आ गई है। उच्च शिक्षा मध्य वर्ग के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में अपने भविष्य का निर्माण करते हैं, लेकिन नेताओं और नौकरशाह की बात तो दूर। अधिकांश विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षक भी अपने बच्चों को भी असुविधा संपन्न प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। आज हमारे साथ गांधीवादी लोहियावादी विचारक डॉक्टर अनूप सर जो है। सर, मोबाइल पर स्वागत सर। आप? हाँ सर,
हेलो।
जी
हाँ
सर,
हाँ
जी, स्वागत है सर आपका।
नमस्कार योगेश भाई, नमस्कार।
सर, कैसे है हमारे स्कूल? आपके क्षेत्र में किस तरीके से स्कूल की व्यवस्था पद्धति देख रहे हैं?
आज भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है
जी जी
वह दो भागों में बट गई है।
जी
एक तरफ है कारपोरेटी शिक्षाकरण, यानी
जी
बाजारवाद की शिक्षा, और दूसरी तरफ है कोरम पूरा करने मात्र की रह गई है गवर्नमेंट की शिक्षा, सरकारी शिक्षा। तो आप देखेंगे कारपोरेट जगत की जो शिक्षा व्यवस्था है, जो स्कूल है, वो व्यवस्था तो मेंटेन करके रह रहे चल रहे, परंतु
जी
कार है, और जो संविधान में लिखा गया है, हमारी भारत की सरकारें और राज्य सरकारें,
जी
जो शिक्षा है वो राज्य सूची में आता है,
जी
हमारे देश की सरकारें उस शिक्षा कर रही। और हत्या इसलिए नहीं कर रही क्योंकि हत्या वो जानबूझकर के कर रही है, क्योंकि जो कारपोरेटीकरण के स्कूल है, जो बाजारवाद के स्कूल है, जो निजी स्कूल है, उसमें कहीं ना कहीं हमारे सरकार, हमारे नेता, हमारे सरकार के लोग और उनके नाते रिश्तेदारों के पैसे लगे हैं और वो लोग स्कूल चला रहे हैं। दूसरी बात यह है योगेश भाई कि ये नहीं चाह रहे हैं कि सरकारी स्कूल हो, क्योंकि ये पूरी तरीके से शिक्षा को निजी हाथों में एक से अपनी जिम्मेदारी खत्म करना चाह रहे हैं, और धीरे 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 इस कगार पे ला करके सरकारी इच्छा स्कूलों को खड़ा कर दिए हैं कि उनको बंद कर दिया जाए। और बंद करने के पीछे जो इनका साजिश है, इतनी व्यवस्था खराब कर रहे स्कूलों का कि अभिभावक स्वयं कहे कि भाई वहां बैठने की व्यवस्था नहीं है, वहां तो बारिश के दिन में पानी टपकता है, वहां तो जाने की व्यवस्था नहीं है, वहां तो शिक्षक नहीं है, तो इसी स्कूल में हम बच्चों को कैसे भेजेंगे। वहीं दूसरी तरफ जब किसी अभिभावक यह देख रहा है कि जो निजी स्कूल है वह सुविधा संपन्न है और सारे लोगों के बच्चे जा रहे, तो हमारे भी बच्चे जाए,
जी
परंतु सरकार इस पर ध्यान न दे करके सरकार जो है स्कूल को बर्बाद करने पर ध्यान दे रही है। और यह सरकार की एक सोची समझी रणनीति है, या सरकार जानबूझ करके उसको बंद करना चाह रही है। आज आप देख लीजिए अपने क्षेत्र के सरकारी स्कूलों की दशा क्या है, तो बारिश के दिनों में तो वहां पहुंचने का रास्ता ही नहीं है। शिक्षक रखे गए हैं तो शिक्षकों का पगार नहीं दिया जा रहा है, कहीं कहीं तो यह कंडीशन है कि जो शिक्षक है वो रेगुलर है ही नहीं, एक एक शिक्षक ही पूरे स्कूल चला रहे, और कहीं कहीं तो यह कंडीशन है कि चार चार परमानेंट टीचर है और वहां दस दस बच्चे हैं। तो सरकार जानबूझकर के इन व्यवस्थाओं को समाप्त करना चाह रही है ताकि वो बंद हो जाए और हमको इससे छुटकारा मिल जाए, जबकि शिक्षा सेवा का क्षेत्र है, शिक्षा त्याग का क्षेत्र है, शिक्षा से समाज बनती है, परंतु सरकार का उस पर ध्यान नहीं है। दूसरा, सरकार का उस पर ध्यान नहीं होने के पीछे का जो कारण योगेश भाई, हमारे जैसे आप जैसे मतदाताओं का है, क्योंकि मतदाता जब वोट देने जाता है, जब सरकार का चयन करने जाता है, लोकतंत्र में हिस्सेदारी करता है, तो अपने स्वार्थ को देख करके मतदान करता है, राष्ट्रीय मुद्दों को देख करके मतदान नहीं करता है, शिक्षा को देख करके मतदान नहीं करता है, चिकित्सा को देख करके मतदान नहीं करता है, बल्कि अपने स्वार्थ के आधार पर मतदान करता है। तो जब
जी
तक मतदाता नहीं सुधरेंगे तब तक यह सरकार पे दबाव नहीं बनेगी, और सरकार पे दबाव अगर नहीं रहेगी तो सरकार तो जानबूझ के शिक्षा व्यवस्था को खराब करना चाह रही है।
जी जहाँ एक और देखे कि स्कूल के शिक्षक के जो बच्चे हैं और अन्य
जी
बच्चक बच्चे किस तरीके के से उनको शिक्षा मिल पा रही है, जहाँ एक
जी
और स्कूली जो स्कूलों में टीचर पढ़ा रहे हैं वे अपने बच्चों को प्राइवेटीकरण स्कूलों में भेजते हैं, वही वे एक शासकीय स्कूलों में पढ़ाते हैं। सर, इसको किस नजरिए से देखते हैं?
आप इसके इस नजरिए में देखिए योगेश भाई, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि राष्ट्रपति हो या चपरासी की संतान, सबकी शिक्षा एक समान,
जी
पहला। दूसरा उन्होंने कहा था कि जन जन की है ये अभिलाषा, चले देश में देसी भाषा।
जी
आज इन दोनों बातों की बहुत बड़ी प्रासंगिकता है, बहुत बड़ा महत्व है। आज सरकारी कर्मचारी अपने बच्चों को ही सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ा रहा है, और दूसरी बात कि सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले लोग ही चाह रहे कि हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़े। इस पे सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, सरकार खुली छूट दे दी है। तो सरकार को यह चाहिए कि एक रेजुलेशन पास करे, एक प्रस्ताव पास करे कि भाई अगर आपको सरकारी नौकरी करना है तो आपके बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाना होगा,
जी
आपको सरकार से सुविधा लेना है तो आपके बच्चे को सरकारी स्कूल में डालना होगा। हम सरकारी सुविधा उन्हीं को देंगे जिनके बच्चे हमारे सरकारी स्कूल में रहेंगे, पहली बात। सरकार को भी यह कहना चाहिए कि नहीं, जो प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं हम उन प्राइवेट स्कूलों के एवज में हम सुविधा अपने यहाँ देंगे। और
जी
आप देखिए कि मध्य प्रदेश में सीएम राइज का एक कंसेप्ट आया है, वो कह रहे हैं कि हम हर संकुल पर एक सीएम राइज स्कूल देंगे।
जी
उसमें होना तो यह चाहिए कि भाई आप संकुल पर क्यों देंगे, जितने स्कूल है आप उनको सीएम राइज बना दीजिए, और
जी
सीएम राइज बनाने में बहुत बड़े खर्चे की जरूरत नहीं है।
जी
आपके पास कह रहे हैं कि हमारे पास बिल्डिंग है, बैठने की व्यवस्था है, टीचर है, जरूरत इस बात की है कि टीचरों को ट्रेनिंग दे दीजिए, वो पढ़ाना शुरू कर देंगे। जो स्कूल में टीचर है सरकारी स्कूल में, उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन बीएड है, तो
जी
इतनी तो क्वालिफिकेशन है, इतनी तो योग्यता है कि वो इंग्लिश समझते हैं, तो उनको अगर थोड़ा सा ट्रेनिंग दे दिया जाएगा तो व्यवस्था सुधर जाएगी। परंतु सरकार इसके पीछे एक चाल चल रही है कि 10 गांव के मिला करके एक स्कूल खोलेंगे, तो 10 गांव के बच्चे जब पहुंच नहीं पाएंगे तो उनको इंग्लिश पढ़ने की इच्छा होगी तो स्वतः प्राइवेट में जाएंगे। तो एक सरकार की चाल है, जबकि हम लोगों की तो मांग ये होनी चाहिए कि हर स्कूल को आप सीएम राइज बनाइए। तो जरूरत इस बात की है कि सरकार एक प्रस्ताव पास करे कि हम सरकारी सुविधा उन्हीं को देंगे जिनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, और तब जाकर के व्यवस्था सुधरेगी, अन्यथा ये व्यवस्था सुधरने वाली दिखाई नहीं दे रही है।
जी सर, सर आपने देसी भाषा की बात की।
जी
सर गांव कस्बों में जो स्कूलें बनी हैं
जी
और
जी
वहां पर जो टीचर पढ़ाने जाते हैं,
जी
वहां के भवन की स्थिति और वहां की शिक्षा पद्धति की स्थिति के साथ साथ जो सर वहां पहुंचने के लिए बच्चों की स्थिति और उस क्षेत्रों में बच्चे किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, आज की
जी
वर्तमान परिस्थिति को किस रूप में देखते हैं सर आप?
हम देसी भाषा कहने का हमारा मतलब यह था कि जब लॉर्ड यहाँ पे अंग्रेजी हुकूमत थी तो उन्होंने अंग्रेजी में शिक्षा देना शुरू कर दिए,
जी
और लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति आप पढ़िए तो बाबू क्लर्क और चपरासी बनाने की शिक्षा देना चाहता था। गांधी जी कहते थे कि अंग्रेजी का ज्ञान होना ठीक है, परंतु अपनी भाषा को भूलना उचित नहीं है। और जब देश आजाद हुआ तो गांधी जी ने अपने पहले साक्षात्कार में ही कहे कि दुनिया को बता दो कि गांधी अंग्रेजी बोलना भूल गया है, और उस दिन से उन्होंने पूरे काम हिंदी में करना शुरू कर दिए। देसी भाषा हमारा कहने का मतलब यह है कि अंग्रेजी भाषा के हम गुलाम न हो, अंग्रेजी हम पढ़े लेकिन उसकी अनिवार्यता ना हो कि आपको अंग्रेजी का एक पेपर पढ़ना ही पड़ेगा, आपके मीडियम अंग्रेजी ही रहेगा। हमारी मीडियम हिंदी हो, हमारी भाषा हिंदी हो, हमारा माध्यम हिंदी हो, अंग्रेजी एक ऐच्छिक रूप में रहे, हम चाहे तो ले और चाहे तो न ले, परंतु अंग्रेजी को हम गुलाम बन करके अपनी हिंदी को जो महारानी होनी चाहिए उसको उसका गुलाम न बनाए। अगर हम गुलाम बनाएंगे तो हम गुलाम नागरिक पैदा करेंगे। देसी भाषा से कहने का तात्पर्य दूसरा यह है कि एक आप भाषा चलाइए हिंदी मीडियम, और दूसरी भाषा चलाइए अपनी क्षेत्रीय भाषा। जैसे हम महाराष्ट्र में है तो मराठी भाषा पढ़ाई जाती है, तमिल में जाते हैं तो हमको तमिल भाषा पढ़ाई जाती है, उड़िया में जाते हैं तो उड़िया हमको पढ़ाई जाती है। इस प्रकार से जो हमारी क्षेत्रीय भाषाएं हैं उन भाषाओं को हिंदी के साथ जोड़ करके चलाया जाए। हिंदी अगर बड़ी बहन है तो छोटी जो क्षेत्रीय भाषा है वो छोटी बहन बने, ये नहीं कि इंग्लिश को उस पर लाद दिया जाए। इंग्लिश की कोई बहुत बड़ी जरूरत नहीं है, और इंग्लैंड में ही जा करके देख लीजिए, बहुत लोग इंग्लिश पढ़ने के इच्छुक नहीं है वहां पे, बहुत लोग अंग्रेजी नहीं जानना चाहते हैं, वो अपने भाषा में पढ़ाई करना चाहते हैं। चीन में जा करके देखिए, वो अपने भाषा में पढ़ाई करते, परंतु भारत के अंदर एक ऐसी वातावरण तैयार किया जा रहा है कि नहीं, इंग्लिश आना ही चाहिए, इंग्लिश मीडियम ही होना चाहिए। तो भाई आपके पास उस टाइप का एनवायरनमेंट नहीं है, अपना एनवायरनमेंट है हिंदी मीडियम का, अपना एनवायरनमेंट है क्षेत्रीय भाषाओं का, तो उसमें पढ़ाई करना चाहिए। और उसमें होगा तो हमारे नागरिक गुलाम नहीं होंगे, हमारे विद्यार्थी गुलाम नहीं होंगे, बल्कि निपुण और योद्धा बनेंगे। दूसरी बात, जो आज तक आप साधनों का पूछे, तो मैंने पहले ही बोला कि जो सरकारी स्कूल है गांव गांव में सरकार खुद उनमें सुविधा नहीं देना चाहती है, खुद उसको सुविधा संपन्न नहीं बनाना चाहती है, ताकि सरकार का खर्चा बच जाए और वहां से स्कूल बंद हो जाए, ताकि उसके स्कूल से मास्टर वास्टर हट जाएंगे तो सरकार के काम कम हो जाएंगे। इसलिए जरूरत इस बात की है कि जनता दबाव बनाए और जन दबाव बना करके उस पर काम कराए सरकार से।
जी सर, भवन हो, बच्चों की पढ़ाई हो, शिक्षा और शिक्षिकाओं की स्थिति हो,
जी
वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्र में इन सब की स्थिति किस रूप में देख रहे सर?
इसको अगर सरकारी स्कूलों की स्थिति आप देखेंगे योगेश भाई, तो केवल ग्रामीण क्षेत्र में ही न जाइए, शहरी क्षेत्र में भी जाइए तो वहां पे भी स्थिति बदतर है। हाँ, वहां पे क्या है, साधन संपन्न है, लोग अपने साधन से चले जाते हैं, रास्ता है, बाकी वही कंडीशन है। वहां की भी सरकारी बिल्डिंगें कोई बहुत अच्छी नहीं है, परंतु जो गांव की आप बात कर रहे हैं, गांव की तो सरकारी स्कूल और सरकारी भवन एकदम तहस नहस हो चुकी है। वहां के जनप्रतिनिधि उस पर ध्यान देते नहीं, ग्राम पंचायत के लोग भी उस पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि उनका यह मानना है कि इसमें बच्चे पढ़ने नहीं आते, इसमें बच्चे बहुत कम पढ़ते हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए वो उसको धीरे धीरे बंद करने के कगार पे ले जा रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि उसको सुविधा संपन्न बनाया जाए और जनता अपना नजर रखे, अगर जनता नजर नहीं रख रही है तो उसको सुविधा संपन्न नहीं बनाए, और विशेष करके उन गांवों में जो गांव हमारे बहुत ग्रामीण क्षेत्रों में है, बहुत सुदूर में है, जहाँ रास्ता नहीं पहुंच पा रहे, वहां शिक्षा पहुंचाना है तो हमें सुविधा संपन्न बनाना होगा, सरकार को उसके तरफ ध्यान देना होगा, क्योंकि महात्मा गांधी ने कहा है कि भारत गांवों का देश है और भारत की आत्मा गांव में बसती है, इसलिए वहां की जो तालीम होनी चाहिए वह अच्छी होनी चाहिए, और तालीम इस प्रकार की हो कि वो रोजगार मूलक हो, तालीम गुलाम बनाने वाली नहीं होनी चाहिए।
जी, तो ये थे डॉक्टर अनूप सर, जिन्होंने मोबाइल वाणी पर कैसे है हमारे स्कूल इस विषय पर अपनी प्रतिक्रिया मोबाइल वाणी के साथ साझा की। अनूप सर, मोबाइल वाणी को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।
जी योगेश भाई नमस्कार।
जी, मोबाइल वाणी से आपका दोस्त योगेश, धन्यवाद।